मान के शरीर पर एक भयानक दानव का कब्जा हो गया था। अमन ने अपनी माँ करिश्मा जी द्वारा लाए गए सुनहरे पर्स से उस दानव पर हमला कर दिया था। इससे मान की आत्मा मुक्त हो गई थी और वो दानव राख हो गया था। मान की आत्मा को देखकर करिश्मा जी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाईं और रोने लगीं। अमन की आंखें भी नम थीं और तारा परी का दिल भी उदास हो गया था। तीनों नम आंखों से मान की आत्मा को देख रहे थे। उन तीनों को रोता देख मान की आत्मा ने बोलना शुरू किया, मॉम आप क्यों रो रही हैं? आप लोगों ने मेरी आत्मा को उस दानव से बचा लिया है। अब मैं हमेशा के लिए अमन भाई के अंदर रहूंगा। मॉम आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि आपके दो बेटे अब एक हो चुके हैं। मॉम आपको दुखी नहीं होना है। तभी मान तारा की ओर देखते हुए बोला, अगर मेरा शरीर नहीं रहा तो ये मत सोचना कि तुम मुझसे अलग हो जाओगी। मैं अब अपने भाई के अंदर रहकर तुमसे प्रेम करूंगा, और वैसे भी मेरा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से है। सो परेशान मत हो, मैं तुमसे दूर जाकर भी दूर नहीं होऊंगा। और फिर अमन को देखकर बोला, भाई क्यों रो रहे हो? अब तो खुश होने का समय आ गया है। हम दोनों तो पहले ही एक थे, आधी आधी आत्मा के साथ जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब देखो, अब हम दोनों एक ही शरीर में पूरी आत्मा के साथ जिंदगी जिएंगे। ऐसा कहकर मान ने अमन से कहा, भाई अब अपने अंदर आने की इजाज़त दीजिए। अमन ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और देखते ही देखते मान की आत्मा अमन के शरीर में प्रवेश कर गई। तभी करिश्मा जी फूट फूट कर रोने लगीं। तारापरी ने उन्हें सहारा दिया और वे दोनों सास बहू गले लगकर रोने लगीं। वहीं अमन, जिसके अंदर अब मान की आत्मा आ गई थी, उसे अपने अंदर अत्यधिक शक्ति का एहसास होने लगा और उसके शरीर में से कुछ देर रंग बिरंगी रोशनी निकलने के बाद बंद हो गई। और जब अमन ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसकी माँ और उसका प्रेम रो रहा है, तब वो हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ा और उन दोनों को देखकर बोला, क्या हुआ ब्यूटीफुल लेडीज, क्यों रो रही हो आप दोनों? अमन ने बिल्कुल मान स्टाइल में कहा, और मान की आवाज़ सुनकर वे दोनों एक दूसरे से अलग हटकर उसकी ओर देखने लगीं। और फिर मान को देखकर वे दोनों खुद को रोक नहीं पाईं और उसके गले लग गईं। तारा परी ने पहली बार अमन को इस तरह से गले लगाया था। अब उसे सिर्फ अपनेपन का ही एहसास हो रहा था। तारा परी का दिल चाह रहा था कि वो बस जिंदगी भर अमन से इसी तरह से चिपकी रहे। अभी वे तीनों करिश्मा जी, अमन और तारा परी गले लगे ही हुए थे कि तभी रानी माँ वहाँ आ गई और रोते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा था? और आपका बेटा एकदम से कैसा भयानक दानव बन गया था? आप लोग इंसान ही हैं ना, या कुछ और हैं? रानी ने थर थर कांपने का नाटक शुरू कर दिया था। तब करिश्मा जी ने अमन से कहा, बेटा अपनी होने वाली सासू माँ को सब कुछ भुला दो, और हाँ बेटा ये भी उन्हें भुला देना कि हम यहाँ अपने दो बेटों के साथ आए थे, उन्हें केवल एक ही नया बेटा याद रहना चाहिए। अमन ने हाँ में सिर हिलाया और फिर देखते ही देखते उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया और उस बगीचे को वापस पहले जैसा कर दिया। और जल्दी ही अमन ने चारों ओर अपने मुंह से धुआं निकालना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर में जैसे ही धुआं हटा, रानी माँ ने अपने आप को अपने महल के हॉल में पाया और करिश्मा जी और अमन तारापरी को एक साथ बैठे हुए पाया। रानी माँ मन ही मन मुस्कुराने लगी और वे तारापरी से मन ही मन बोली, तारा बेटी तेरे नेक दिल इंसान ने लगता है हमारी सारी यादें मिटा दी हैं। तब तारापरी बोली, माँ आपको ऐसे ही व्यवहार करना है, मानो कि जैसे आप सब कुछ भूल गई हो। तब रानी परी बोली, हाँ हाँ बेटी हम जानते हैं, तुम परेशान मत हो। तभी रानी माँ वहाँ आ गई और करिश्मा जी को देखते हुए बोली, करिश्मा जी आपने हमसे अपने बेटे के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगा था, आप लोगों ने हमारी बेटी की जान बचाई है और उसे आप सही सलामत यहाँ तक ले आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका एहसान है हम पर। करिश्मा जी हमें आपका बेटा काफ़ी पसंद आया, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें पूरा यकीन है कि आप और आपका बेटा हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखेंगे, बस एक बार इन दोनों की शादी हो जाए फिर हम सब कुछ गरीबों में दान करके हमेशा के लिए चारधाम की यात्रा पर निकल जाएंगे। जैसे ही करिश्मा जी और अमन ने ये सुना वे हैरान हो गए। तब करिश्मा जी जो मान के जाने से दुखी थी वे अब एकदम से ही बोल पड़ी, ये आप क्या कह रही हैं? तब रानी माँ जो कि ठकुराइन के वेश में थी बोली, जी करिश्मा जी वो दरअसल हमने मन्नत मांगी थी, अगर हमारी बेटी सही सलामत लौट आती है तो हम ये सब कुछ दान करके अपनी बची हुई जिंदगी चारधाम की यात्रा में ही गुजारेंगे, और वैसे भी तारा के पिताजी के मरने के बाद हमारी जिंदगी में केवल हमारी बेटी तारा ही थी, और तारा के जाने के बाद हमारी पड़ोस की ये जो दो बेटियां हैं सोनल और मीनल, इन्होंने हमारा ध्यान रखा है, अब आप ही बताइए बहन जी हम कब तक ऐसे रह सकती हैं, इसलिए हमने मन्नत मांगी थी, और फिर अब तो आप जैसे नेक लोग मेरी बेटी के साथ हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर अब कोई आंच नहीं आ सकती है, तो भला हमें अब किस चीज की फिक्र करने की जरूरत है। ऐसा कहकर रानी माँ ने तारापरी को गले से लगा लिया और फिर करिश्मा जी से बोली, करिश्मा जी हमारी आपसे एक विनती है कि आप आज ही हमारी आंखों के सामने तारा और अमन की शादी करा दो। करिश्मा जी ये सुनते ही हैरान हो गई और करिश्मा जी सोचने लगी, हमें तो लगा था हमें ही जल्दी है, लेकिन ये तो हमसे ज्यादा जल्दबाज निकली। करिश्मा जी मन ही मन थोड़ा बेहतर फील कर रही थी, वे तो सोच रही थी कि न जाने अब तारा को अपने बेटों की जिंदगी में लाने के लिए उसे और क्या क्या पांव पसारने पड़ेंगे, लेकिन अब तो ठकुराइन जी ने खुद ही कह दिया था कि वे उनकी बेटी की अपने बेटों से आज ही शादी करा दें। तब करिश्मा जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जी जी बहन जी क्यों नहीं, हम आज ही इन दोनों की शादी करा देते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों गले लग गईं और अमन मान मन ही मन मुस्कुराकर तारा की ओर देख रहे थे। और फिर रानी माँ के आदेश पर सोनल और मीनल परी तारा परी को अपने साथ ले गईं और रानी माँ ने करिश्मा जी और मान के लिए भी अलग अलग कमरे उपलब्ध करा दिए थे। उन्होंने सबकी प्राइवेसी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा था और शादी की तैयारी करने के लिए जल्दी ही गांव के कितने सारे लोग वहां आ गए और रानी माँ के हुक्म पर उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। और इस महल के बड़े से बगीचे को दुल्हन की तरह सजाया गया था और देखते ही देखते कुछ ही देर में उन सब लोगों ने मिलकर पूरा का पूरा बगीचा दुल्हन की तरह सजा दिया था। करिश्मा जी भी तैयार हो गई थी, रानी माँ ने ही उनके लिए बहुत खूबसूरत कपड़े व्यवस्थित किए थे। करिश्मा जी ज्यादा हैरान थीं कि इतने कम समय में उन्होंने कितनी अच्छी तरह से सब कर लिया था। वे सोच रही थीं कि उनके जादुई नौकर भी इतनी अच्छी सजावट नहीं कर पाते थे। सारी सजावट पर नजर डालती हुई करिश्मा जी अमन के कमरे की ओर बढ़ गईं। करिश्मा जी ने देखा कि अमन उदास सा बिस्तर के एक सिरे पर बैठा हुआ था। करिश्मा जी ने अमन के इस तरह से बैठने की वजह पूछी। तब अमन ने बताया, मॉम मेरे पास शादी के लिए पहनने को कपड़े ही नहीं है। वैसे तो मैं अपने जादू से कपड़ों का ढेर लगा सकता हूँ, लेकिन क्या आज के दिन जब मेरी शादी होने वाली है क्या मैं जादुई कपड़े पहनूंगा।
अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी रानी माँ वहाँ आ गईं और रानी माँ ने अमन को परीलोक द्वारा बनाया गया एक बेहद खूबसूरत शादी का जोड़ा दिया। जो परीलोक का जोड़ा था उसमें हीरे जवाहरात और सोने और चांदी की कारीगरी थी। वो दिखने में एकदम किसी राजा महाराजा की पोशाक लग रही थी। रानी माँ ने वो हीरे मोती का जड़ा जूड़ा अमन को देते हुए कहा, बेटा ये शादी का जोड़ा हमारे खानदानी पोशाक है। तारा के परदादा ने ये जोड़ा बनवाया था। उस वक्त तारा के दादा यहाँ के राजा थे। करिश्मा जी ने जैसे ही ये सुना वे हैरान हो गईं। जहां वे पहले तारा परी को एक गरीब बेसहारा लड़की समझ रही थीं, वहीं अब तारा परी को लेकर उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल गया था। अमन ने जैसे ही वो पोशाक खोलकर देखी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो एक जिन था जिसने हर तरह के कपड़े देखे थे, लेकिन इतना खूबसूरत कपड़ा तो उसने सपनों में भी नहीं देखा था। वैसे अमन के साथ साथ करिश्मा जी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जल्दी ही अमन वो हीरे मोती का जड़ाऊ जोड़ा पहनकर एकदम से तैयार हो गया और अमन के जोड़े के साथ साथ अमन का चेहरा भी एकदम सोने की तरह दमक रहा था। वहीं सोनल परी और मीनल परी ने तारा परी को सजाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। सोनल और मीनल परी एकदम सगी बहनें थीं और वे दोनों इकलौती सहेली थीं तारा परी की। मोहन ने तारा परी की खुशी के लिए ऐसा प्रबंध किया था कि तारा परी को उसकी शादी के दिन अकेला महसूस न हो और उसकी माँ, उसकी दोस्त, वो सब उसके साथ हों। और इतना ही नहीं, तारा परी की जिंदगी अब और आसान हो गई थी। पहले उसे दो नेक दिल इंसान से शादी करनी पड़ती, लेकिन अब तो नेक दिल इंसान भी दो नहीं बल्कि एक ही था। सोनल परी और मीनल परी ने तारा परी को बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया था। ऐसा लग रहा था मानो तारा परी की खूबसूरती देखकर चांद सूरज तारे सब नजरें चुरा गए थे, क्योंकि उस पार विश्व में उस वक्त कोई सबसे खूबसूरत चीज थी तो वो कोई और नहीं बल्कि तारा परी थी। तारा परी का हुस्न शबाब देखकर आसमानी रूहें भी जगमगा उठी थीं। इतनी खूबसूरत दुल्हन कोई नहीं थी, ना ही धरती पर और ना ही आसमान पर और ना ही किसी और लोक पर।